नम्र रहता और झुकता, रानी निंदा सब कुछ सहता, नम्र रहता और झुकता, रानी निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे,
अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
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 हमें देख कर और करेंगे।
क्या गीत था? हमें देखकर मुझे बाबा की एक और बात याद आ रही थी, ये तो है ही, जैसे हमारे कर्मों को देखकर दूसरे लोग फॉलो करते हैं। सुख संवाद 76 में कही गई, 1976 में, जैसे तुम कहते हो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, अब ये सोचो जैसा संकल्प हम करेंगे ऑटोमेटिकली वैसा ही सब करेंगे। बहुत गहरी बात है ये, क्यों होगा ऐसा बताओ? कोच पे बैठी माताएं सेवादारी, बोलो, जैसा संकल्प हम करेंगे वैसा ही बहुत करने लगेंगे, क्यों हो जाएगा ये? हम पूर्वज हैं और कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, तो हमारे संकल्पों का प्रवाह दूर दूर तक जाता है, तो क्या करना चाहिए बोलो? सीधी सी बात, बहुत सुंदर श्रेष्ठ सुखदायी आनंदकारी संकल्प करने चाहिए। आज हम आपसे कुछ चिंतन भी कराएंगे, आगे वाली माताएं तैयार हैं? या सोचते हैं कि आगे बैठ के तो मुश्किल हो गई, इधर वाली कोच वाली भी सब तैयार रहे। बाबा के दो सुंदर महावाक्य, तुम भाग्यवान हो और भगवान के हो, दोनों ही बहुत नशे की बातें हैं। समझते हैं हम बहुत भाग्यवान हैं? कौन कौन समझते हैं, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, एक दूसरे को देख के उठा दिया कईयों ने सुना भी नहीं था, फिर भी सोचा कुछ हो तो रहा है, हम भी उठा दें। हम भाग्यवान हैं और भगवान के हैं। किसका परिवार हैं हम? ईश्वरीय परिवार नहीं, कुछ अच्छी बात कहो। हम किसके परिवार हैं? भगवान के परिवार हैं। जिस परिवार में, आप सोचेंगे सभी, जिस परिवार में हर एक आत्मा भाग्यवान है, छोटी बात नहीं होती है, जिस परिवार में हर एक आत्मा पुण्य आत्मा है, जिस परिवार में हर एक, भाई लोग बोलो, देव कुल की मान आत्मा है। जरा निकलो, ऊपर उठो भाई लोग, जगाओ अपना कलश। मिला है ना ज्ञान का कलश, या इधर कर दिया? इधर भी है ना। हमारे परिवार में वो हैं जो इष्ट देव देवियां हैं। ऐसा सुंदर परिवार जिसमें हर व्यक्ति दिव्य बुद्धि से संपन्न है। सभी परिवारों में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं, अपने परिवार को भी और चारों ओर देखते भी होंगे। चार बच्चे हैं, दो अच्छे हैं, एक कम बुद्धि का है, एक काम नहीं करता है। भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं परिवारों में होती हैं, हैं तो इस परिवार में भी भिन्न भिन्न, लेकिन सभी महान हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा होना चाहिए, हम भगवान के हैं। मैं एक बात आजकल बहुत कह रहा हूं, और जितना मैं कह रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, आपको भी आएगा। आप करो, उसको बढ़ाओ, भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या। या नशे में ले आओ इसको, अब नशे में ले आना अपने चिंतन में और नशे में। गीत तो है, ईश्वर अपने साथ है, लेकिन ये हमारे नशे में समा जाए कि जिनके साथ भगवान है, बोलो, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अब सुनाओ, मैंने एक बात सुना दी, जिनके साथ नहीं, अगली बात आप तो तोते बन गए, अगली बात सुनाओ, जिनके साथ भगवान है, अगली बात। अगली बात सुनाओ। जिनके साथ भगवान है उन्हें किसी का डर नहीं। अब सुनाओ, ये रिपीट नहीं करो। जिनके साथ भगवान है माता है तो भाई सुनाओ, वे बेफिकर बादशाह हैं। किसी मनुष्य को किसी अच्छे या शक्तिशाली मनुष्य का साथ भी मिल जाए, साथ का यहाँ अर्थ ये नहीं होता कि वो साथ रहता है स्थूल में, भाई वो व्यक्ति हमारे साथ है, जब भी बुलाएंगे आ जाएगा मदद करने के लिए। बाबा को भी हम ऐसे ही कहते हैं, बाबा हमारे साथ है, जब भी बुलाएंगे आ जाएगा। इसका अर्थ नहीं साथ है तो बुलाएं क्यों, साथ है ये नहीं कि सर्वव्यापी है। नशा, भगवान हमें साथ दे रहा है तो जीवन निश्चिंत होता जाएगा, निर्भय होता जाएगा, हमारे संकल्पों में महानता आती जाएगी, हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। अगर जितना नशा होगा ना, भगवान साथ दे रहा है, कोई बुरा करना भी चाहेगा होगा ही नहीं, ये नशा हो जाए तो हमारे संकल्पों में भी बहुत पावर है, और बाबा की पावर के तो कहने ही क्या। तो बहुत अच्छा नशा रहे, और सभी ब्राह्मणों को, सेवाधारी बैठे हैं ना बहुत, मधुवन से ये सौगात लेकर जाना। ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत पावर है। किसके संकल्पों में, अभी और कुछ बोलो, हमारे संकल्पों में। ये नशा भी बहुत बड़ा है, इसलिए जो संकल्प हम बार बार करते रहेंगे वो होने लगेगा, उसका निर्माण होगा। ये दो बातें बहुत पक्की कर दे मधुबन में आकर, संकल्पों में हमारे बहुत पावर है, अपने संकल्पों को ढीला नहीं करना। माताएं सुनाती है मुझे, बच्चे को बड़ी बीमारी हो जाएगी, मैं संकल्प करती रही, कोई नहीं बाबा है ठीक हो जाएगा, बिल्कुल न खुद घबराई न परिवार वालों को घबराने दिया। ठीक हो गया। संकल्पों में बहुत शक्ति होती है, बस यही है कि हम घबरा कर संकल्पों को कमजोर न कर दें। सभी ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। तो भगवान, हम भगवान के हैं तो उसका सब कुछ किसके लिए होगा? हमारे लिए। दूसरा आगे का नशा है। अब है तो हम, हमारे लिए सब कुछ, लेकिन उस खजाने में से लेना वो हमारे ऊपर है। हम कितने योग्य बनेंगे ये हमारे ऊपर है। बाबा योग्य बना रहा है, बनना किसे होगा? हमें। बाबा की एक बात याद आ गई मुझे, बहुत ही बहुत बहुत गहरी है। अंत में नंबर किस आधार पर मिलेंगे? है तो मुरली की, लेकिन सब तो सुनते नहीं है वो गहरी बातें। नहीं, और कुछ इतनी मोटी होती तो गहरी मैं न कहता हूं। तीन बातों के आधार पर अंत में नंबर मिलेंगे। पहली है कितनों को योग्य बनाया। सेवा का फील्ड है ना, सेवा तो बहुत कर रहे हैं, कई लोग ज्यादा कर रहे हैं, उनके भी नंबर हैं, लेकिन असली नंबर उन्हें मिलेंगे जिन्होंने बहुतों को योग्य बनाया होगा। और दूसरी चीज बहुत पावरफुल योग की है, वो पूरा ब्राह्मण जीवन कितना शक्तिशाली बन कर रहे। और तीसरी धारणा से जुड़ी हुई है, पूरा ब्राह्मण जीवन कितना निर्विघ्न रहे। क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी अगर विघ्नों में जीवन बीतता चले तो मजा तो कुछ भी नहीं आएगा। कितने निर्विघ्न रहे, कितने पावरफुल रहे, कितनों को योग्य बनाया। कई लोग सेवाओं में दूसरों को योग्य नहीं बनाते, सोचते हैं ये योग बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मनुष्य की कमजोरी है, वो सोचता है ऐसा, मेरे सारे चांस तो इनको चले जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि चांस कोई दो चार नहीं है जो उनको चले जाएं, चांस तो हजारों हैं। अवसर कोई गिने चुने नहीं होते, वो तो अनगिनत हैं। वो जाएंगे हमारे पास, उससे बड़े आ जाएंगे। ये संकल्प करें, इसको उदारता कहेंगे। इसलिए जो दूसरों को योग्य बनाकर आगे बढ़ाते हैं उनका महत्व ज्यादा है। एक से तो काम नहीं चल सकता ना, कहीं भी एक से काम नहीं चलेगा, दो चार से भी नहीं चलेगा। हमारा बहुत बड़ा योग्य आत्माओं का ग्रुप हो तो काम चलेगा ना। इसलिए आप देख सकते हैं संसार में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा स्पीकर किसके पास है? चुप हो गए आप तो। अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास। संसार में इतने स्पीकर कहीं नहीं होंगे, कम से कम 1000 तो होंगे ना सुशील, अच्छे स्पीकर 1000। तो कितनी सुंदर चीज है, ब्यूटी है ये हमारे संगठन की, क्योंकि सब एक दूसरे को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, योग्य बनाते हैं, सेवा सब मिलकर करते हैं। तो हम सभी पहले इस चीज पे ध्यान दें। अब चिंतन करेंगे, भाग्य बहुत मिले हैं हमें, तुम बहुत भाग्यवान हो, बाबा ने कह दिया। अब जरा एक लिस्ट बना लें, हमारा भाग्य क्या क्या है। कभी अव्यक्त बाबा की ये लहर चली थी बहुत पहले, सवेरे उठते ही अपने भाग्य के गुणगान करो, बहुत अच्छी लहर थी। याद करो क्या क्या भाग्य है मेरे, क्या क्या मिल गया मुझे इस जन्म में, जिससे हमें नशा हो, हम बहुत भाग्यवान हैं। दुनिया में तो जिसके पास पैसा ज्यादा हो गया लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान है, चाहे रात को नींद ना आती हो, लेकिन केवल धन से तो भाग्य नहीं मिलता ना। भाग्य की निशानी वाह आपने तो फर्स्ट, किसने उत्तर दिया तुमने, बहुत होशियार माता जी। मैं तो सोचा था माताओं का कलश आज छलक नहीं रहा है। अच्छा दूसरा बताओ, श्रेष्ठ भाग्य की निशानी बहुत खुशी। हाँ दूसरा बताया शुद्ध संकल्प, महान संकल्प, भाग्य। बोलो अब मैं एक बोल देता हूँ फिर आगे चिंतन करना। भाग्यवान की निशानी सहज सफलता, कहीं भी कार्यों में, नौकरी लेनी है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई घरों में बहुत सारे काम है, शादियां हो रही हैं, कुछ और हो रहा है, निर्विघ्न सहज सफलता। और जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा, कदम कदम पर बाधाएं, अपने ही दोष जाएंगे, उन्हें मनाने में ही टाइम लग जाएगा। भाग्यवान बहुत खुश, बहुत सफल, बोलो आगे, बहुत ये भी बोला, सरल चित्त, हाँ वो हो गया बहुत सरल, क्योंकि उसे अपने भाग्य की इतनी खुमारी, इतना नशा रहता है कि भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं, तनाव से मुक्त। हम भाग्यवान हैं, निश्चिंत, सहज सब कुछ प्राप्ति। सरलता का यहाँ दूसरा स्वरूप, कम मेहनत करेंगे मिलेगा ज्यादा। दुनिया में भी है ना आजकल, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी मेहनत करने से बहुत अच्छी कमाई होती है, कोई बहुत लगे रहते हैं फिर भी कमाई अच्छी नहीं होती। एक है सफल होना, कोई इंटरव्यू दे रहा है पहले ही प्रयास में सफल, कितने होते हैं आईएएस जो सबसे भारी कंपटीशन है, छोटे लड़के बीए किया बस, गरीब घर से हैं, पहले ही प्रयास में बन गए कलेक्टर, तो भाग्य है ना। ये भाग्य कैसे बनता है, कौन सी कलम है, श्रेष्ठ कर्म की कलम। कितना अच्छा बाबा ने कहा है, भगवान ने पढ़ाया है, कोई कम बात है, मैंने तुम्हें भाग्य की रेखा खींचना है, खींचने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है, अब जो चाहे रेखाएं खींचो। मिली है कलम सबको, पर्स में रखी या खोल के रखते हैं, रेखा खींचनी है, ऐसे नहीं पर्स में बंद हो जाए, रेखाएं खींचनी है, और वो है श्रेष्ठ कर्म करना। जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं उतना ही भाग्य श्रेष्ठ बनता है। लोग कहते हैं ना भाग्य कहीं लिख दिया, भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया, भगवान ने नहीं लिखा, तुमने खुद लिखा है। हर मनुष्य अपने भाग्य की रेखाएं खुद खींच रहा है कर्मों के आधार पर। चलो विचार करेंगे, बाबा से मुझे क्या क्या भाग्य मिला, क्या क्या प्राप्त हो गया, बोलो। स्वयं सुशील बोल रहा है, स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, वो हमारे घर में आ गया। बाबा के ये शब्द बहुत सुंदर हैं, माताओं को तो नशा चढ़ जाना चाहिए, बच्चे विचार करो भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आ गया है। किसी के घर में प्राइम मिनिस्टर आ जाए, हाथ पांव भी फूल जाएंगे, अब क्या करें, इन्हें खिलाएं क्या, क्या करें, और भगवान ही आ गया, कितनी बड़ी चीज है ये। सबसे बड़ा भाग्य है ना हमारा, सबसे बड़ा भाग्य है कि भगवान स्वयं हम पर नजर रखता है, हमें इधर से उधर नहीं जाने देता। जिसने अपना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया उसको वो इधर से उधर नहीं जाने देगा, मतलब वो कुछ गड़बड़ करना चाहे रोक देगा, बंधन नहीं सुरक्षा। हमारा बहुत बड़ा भाग्य, अब आप चिंतन करेंगे, मैं आपके चिंतन को बढ़ा रहा हूं, आप चिंतन करेंगे, हमारा बहुत बड़ा भाग्य। देखो दुनिया में आजकल मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, आईआईटी के कॉलेज खुले हैं इंजीनियरिंग के, 10 तो प्राइम मिनिस्टर नहीं खोले थे पहले ही उनके अपने काल में। बच्चों को अगर आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, बड़े नशे में रहते हैं उनके माँ बाप भी, मेरा लड़का आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है, क्या समझा तुमने, गवर्नमेंट के हैं तो पढ़ाई भी सस्ती होती है, बाहर के कॉलेजों में तो महंगा है सब कुछ, लेकिन पढ़ाई भी बहुत अच्छी आईआईटी की। और जिनको भगवान पढ़ाने आ जाए वो कितने भाग्यवान होंगे, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, है ना बड़ी चीज, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं, ग्रंथ संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं। माताएं पढ़ेंगी संस्कृत, बाबा कहा करते थे मैं संस्कृत में ज्ञान दूं तो माताएं क्या समझेंगी, माताएं क्या भाई भी, आजकल कोई पढ़ता है संस्कृत, जो संस्कृत का प्रचार करते थे उनके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं। अब चिंतन आगे बढ़ गया होगा, सुनाओ और भाग्य। अरे वाह, खड़ी हो ना, भोली माता कौन है, बहुत अच्छा बोला, दूर से भी आपकी आवाज आ गई, धन्यवाद। बाबा ने भोली भोली माताओं को अपना बना, सचमुच भाग्य है, गले से लगाया, दुख के आंसू पहुंचे, दुख तो सारे ही हर लिए, बचा लिया। वाह वाह, माताएं तो गजब के उत्तर दे रही है, तो मुझे भी ख्याल नहीं था, हैं? स्वर्ग हथेली पर लेकर आ गए, हमें भी इतना महान बना दिया कि हम भी दुखहर्ता सुखकर्ता बन गए। दिल तख्त पर बैठा लिया, भगवान के दिल तख्त। अब भाई बोले एक 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 एक, जैसे माताएं एक एक बोल रही थी, हैं बोलो पीछे वाले, वाह वाह, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बहुत सुंदर बात है। किसी को हेल्थ अच्छी ना हो वो भी भाग्यवान नहीं होते, और किसी को कोई बीमारी ना हो लोग भी कहेंगे बड़ा भाग्यवान है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, धन भी मिला, खुशी भी मिली, स्वास्थ्य भी अच्छा दिया बाबा ने। तो मैं पहले थोड़ा सा बोल दूं, भोली माताएं, क्यों भोली कहा, भोले थोड़ा यार, भगवान को पहचान लिया तो भोले हैं क्या, बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए, सत्य ज्ञान मिल गया तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, हो गए या नहीं। ये ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं है, हमारे पास बिल्कुल सरल रूप में है, इसलिए हमें उसी की खुशी कम रहती है। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा जो एंड है, अंत। शुरू में हम लोग एक बात कहा करते थे, और ये समाजियों से काफी बहस होती रहती थी, तो कई आर्य समाजी ज्ञान में आ गए। अब वही कहते थे कि जहां वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से ब्रह्मा कुमारियों का शुरू होता है, और ये बात सत्य है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊं। एक बार हम उत्तराखंड में गए, यहां काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर है उत्तर काशी, तो वहां एक पब्लिक प्रोग्राम था, मेरे साथ एक बहन भी थी, उसको ऑपरेशन हुआ था। मैंने कहा तुम भी कुछ बोलना, कहा मैं क्या बोलूं, मेरे में तो ना ताकत है ना बुद्धि काम कर रही है। मैंने कहा तुम ऐसा करना, आत्मा का ज्ञान परमात्मा का योग कैसे लगाएं आधे घंटे में धीरे धीरे बता देना। उसने कर दिया भाषण, सभा अच्छी बड़ी थी, तो लास्ट में एक व्यक्ति भागा भागा आ रहा जब हम बाहर निकल रहे। उसने मुझे कहा ये बहन कौन है भाई, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, वो थोड़े पीछे आ रही थी बहनों के साथ, मैं आगे था। ये बहन कौन है, मैंने कहा क्या हुआ, अरे इसने तो आधे घंटे में वेदों का सार बता दिया। मैं भी देखने लगा उसे का ये हमें भी नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार सुना था, इतने में वो भी आ गई। मैंने कहा देखो ये क्या कह रहा है, उसको भी खुशी हो गई। मैंने कहा फिर दूसरे आ गए, उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति है ना यहाँ का प्रसिद्ध कथाकार है, इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ उत्तरकाशी। मैंने कहा देखो चुपचाप लोग बैठे वेदों शास्त्रों का सार सुन के चले गए, कितना बड़ा भाग्य है कि भटकना नहीं पड़ा, किसी के आगे माथा टेकना नहीं पड़ा, किसी के आगे शीश झुकाना नहीं पड़ा। बाबा तो पैर भी छूने नहीं देते थे, मेरे को तो पैर है ही नहीं, कहां से छूओगे मेरे पैर, मैं तो निराकार हूं। तो हम सब का भाग्य सचमुच वर्णन करने योग्य है। बाबा के बहुत ही सुंदर एक और महावाक्य है, मैं वो भी सुना दूं आपको, और उसको समझते हुए हम अपने भाग्य की खुशी में नशे में रहने लगे। बाबा ने कहा तुम अभी अपने भाग्य को नहीं जानते हो, अंत आएगा जब सारा संसार तुम्हारे भाग्य का गायन करेगा, तब तुम्हें अपने भाग्य का बहुत नशा चढ़ेगा। जब माताओं भोली माताओं के घर पर लोग आएंगे, दर्शन करने आए हैं, क्यों? तुम भगवान से मिली, अनेक बार मिली, दर्शन दो। जिन्होंने भगवान के दर्शन किए लोग उनके दर्शन करके धन्य धन्य हो जाएंगे, होगा या नहीं? तब हमें भी नशा चढ़ेगा कि बाबा से मिलन को हम सरल मानते थे, सिंपल, बाबा आ रहे हम मिल रहे, बाबा आ रहे हम मिल रहे, लेकिन कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है हमें। मैं आज याद कर रहा था 75 की बात है, 1975 की, उससे पहले यहाँ 3 साल अकाल पड़ गया था, बिल्कुल बरसात नहीं हुई, नक्की लेक भी सूख गई थी, पीछे एक नदी रह गई थी बस। हम लोग म्यूजियम जाते थे रोज शाम को, तो इधर से नक्की लेक से ही उतर जाते थे नक्की लेक में, उधर ही निकलते थे, रास्ता बन गया था। तो फिर बाबा के बच्चे कह रहे कि बाबा कैसे करें, बाबा से तो मिलना है मिलना है। 75 की बात थी, बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ था व्यक्त हुए बाबा को, तो बरसात हुई इन दिनों में ही, बहुत अच्छी बरसात हो गई। तो दादी ने फट से प्रोग्राम बना दिया कि भाई बाबा से मिलने आना है सबको, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक 2 मास का प्रोग्राम बना दिया। अब उस 2 मास में क्या था प्रोग्राम, 1 दिन आएंगे, 3 दिन रहेंगे, 4th दिन जाएंगे, 4th दिन ही आ जाएंगे नए लोग। देखो कमरों की सफाई आदि करना, और बारिश हो रही धुआंधार, धुआंधार जिसको कहते हैं ना, यहाँ की बारिश तेज हवाएं और ये सब होती थी। ये हॉल बना ही बना था अभी, तो मैं सोच रहा था जिस बात को मैं आपको कह रहा हूं कि उन 3 दिनों में, 3 दिन पार्टी रहती थी ना, 2 दिन बाबा आते थे, आज पार्टी आई कल बाबा आएंगे, फिर 1 दिन छोड़ेंगे फिर बाबा आएंगे, फिर वो पार्टी जाएगी उसी दिन आ जाएगी फिर बाबा आएंगे, तो 8 दिन में 4 बार, तो 60 दिन में 30 बार, 30 बार बाबा आए, हमारे लिए तो परम आनंद था, लेकिन स्थूल काम भारी भी था, लकड़ी सारी भीग जाती थी बरसात में, उन्हें ही हमें जलाना होता था, बताओ कैसे जलती होंगी, एक अखबार भी नहीं होता था यज्ञ में जिसके कागज को जला के लकड़ी जला दें, यज्ञ की स्थिति दूसरी थी तब। तो ऐसा सुंदर समय देखा, मैं सोच रहा था कितनी बड़ी बात थी, बस बाबा आ रहा, हम लोग भाग दौड़ कर रहे, चलो बाबा से मिल ले फटाफट काम करके, और तब सेवादारी नहीं होते थे सुशील भाई, सेवादारियों का युग अभी नहीं था, हम 2-3 ही भाई होते थे किचन में, सारा काम वही करते थे। तो कितना बड़ा भाग्य मिला। बाबा ने भी कहा कि बाबा बहुत खुश होते हैं कि बाबा की मुरली सुनने के लिए बच्चे डायरी लेके कैसे भाग रहे हैं, देखता था ना ऊपर से। प्यार की निशानी है ना ये भी। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। और अच्छा चिंतन करो, भगवान को इस धरा पर बार बार उतरते हुए देखा, उसको दिव्य कार्य करते हुए देखा, वो सृष्टि कैसे रच रहा है नई ये इन आंखों से देखा। कितनी बड़ी चीजें हैं दुनिया की फिलोसफीज में। इस पर भिन्न भिन्न मत हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक मत ये भी है कि सृष्टि तो अनादि है और ये चक्र चारों युगों का घूमता ही रहता है, पर बस एक ही बात मिस है, किसी को ये नहीं पता। नहीं, सोच लो, सतयुग से त्रेता आ गया, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। अब ये कलयुग सतयुग में कैसे जाएगा, वो तो ये सोचते हैं चक्कर घूम रहा आप ही चला जाएगा। संगम युग का ज्ञान, इसमें भगवान के आने का समय और उसका दिव्य कार्य करके कलयुग को सतयुग में बदलना, जिसको हम इन आंखों से देख रहे हैं, बस वही चीज मिस हो गई। ऐसे ही सोचते हैं कि चक्र चल रहा, जैसे दिन रात हो रही ना, अभी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, कुछ करना तो है नहीं, आपे ही हो रहा है, लेकिन करना तो है ना। रात दिन में कैसे बदलती है, बड़े गंभीर हो गए। अरे सूरज निकलता है ना, आपे ही थोड़ा ही हो जाती है। तो ज्ञान सूर्य आके कलयुग की रात को सतयुग में बदल देते हैं, बस ये बात बाबा ने स्वयं आकर बताई, हम सब ने उसे जान लिया, देख लिया, स्वीकार कर लिया। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। और आगे सोचो, भगवान साथ चल रहा है हमारे। सोचने की बात है, मैं बहुत सोचता था ये बात शुरू में। 5000 साल हमने यात्रा की, थक गए थे, अंत में क्या हुआ, स्वयं भगवान आ गए। अब मैं हूं तुम्हारे साथ, थकान उतार दी, ज्ञान देकर, प्यार देकर ही थकान उतार दी। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हमारे लिए स्वर्ग की रचना हो रही है, हमारे द्वारा करा रहा है, लेकिन कर वो रहा है, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। मुरली में आ रहा था ना आजकल में, इतनी धन संपदा होगी अंदाज भी नहीं लगा सकते हम। कर रहे थे ना बात के चीन के पास इतना है कि टनों सोना खरीद ले, और अमेरिका के पास इतना है, रशिया के पास इतना है, लेकिन हमारे पास उन सबको खरीद ले होगा ना इतना, उससे भी बहुत ज्यादा। ठीक कहा आपने, स्वर्ग की भेंट में तो कुछ नहीं, सब हमारे पास आ जाएगा, माल पानी। माताओं को बहुत खुशी, मैं क्या करता हूँ, माताओं की साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे। सोना तो छोड़ो, सोना तो आजकल भी जड़ देते हैं, साहूकार लोग सोने की जरी लगा लेते हैं, हीरे जड़े होंगे, चमकेंगे भिन्न भिन्न। उसकी निशानी आजकल है सितारे, सितारे लगाते हैं, सिल देते हैं, यहाँ राजस्थान में बहुत है। हाँ, तो इतना ज्यादा हो जाएगा, और वो इतने हल्के होंगे, ऐसे नहीं कि कपड़े भारी हो जाएंगे, हल्के होंगे, बहुत हल्के। तो बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब अपने भाग्य को देखकर बहुत मुस्कुराओ। और बड़ा भाग्य क्या है आप सबका बताओ। अरे एक और बता दो उससे पहले, नहीं ठीक का, ठीक का, बिल्कुल अच्छा का। ब्रह्मा भोजन खाते हैं और खिलाता भी है स्वयं भगवान। और एक बड़ा भाग्य आप सबको और मिला है, अमृत वेले भगवान मिलने आते हैं, और वो ना आए तो हम चले जाते हैं। ये भी तो है। अब बताओ एक और बड़ा भाग जो प्रैक्टिकल है, आप सभी को मधुवन में सेवा करने का या जो भट्टी में आए हैं उनको भट्टी में आने का मौका मिला। सेवाधारियों का कम महत्व थोड़ा ही है, भाग्य बना रहे हैं आप अपना। ये सेवा छोटी चीज नहीं है कि सब्जी काट दी, रोटी बना ली, भोजन बना दिया। ये बहुत बड़ा भाग्य बनाने का आधार है। थोड़ा सा धन बाबा के कार्यों में लगाते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि भगवान को धन नहीं चाहिए। क्या देखता है वो? इनका प्यार और भावना कितनी है। तो बहुत भाग्यवान हैं हम सभी। अब इस भाग्य को बहुत आगे बढ़ाना है तो अमृत वेले बहुत सुखद फीलिंग करेंगे। और सवेरे उठकर ये चीजें जरा 2-3 मिनट याद कर लेना, वाह मेरा भाग्य वाह याद कर लेना। और फिर देखो इन सब से भाग्य बनता है। मैंने कई बार बाबा की एक बात सुनाई है, वो एक ही बार आई है मुरली में, 74 में आई थी, तब से मैंने नोट की थी उसको। बहुत ही गहरी बात थी, हमें समझ में तो ज्यादा कुछ नहीं आया था, लेकिन ये समझ में आया था कि बहुत गहरी बात है। संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। यानी जिसके संकल्प जितने महान, उनका भाग्य उतना ही महान। इसलिए सवेरे जो बाबा की मुरली चलती है, उससे हमारे संकल्प रोज बदलते हैं। सच कहें तो रोज की मुरली सुन के हर व्यक्ति रोज बदल रहा है। गति इतनी सूक्ष्म है कि उसका पता नहीं चलता, पर मुरली सुन के हम रोज बदल रहे हैं। हमारे विचार बदलते हैं, हमारा नशा बदलता है, हमारा योग बदलता है, हमारे कर्म बदलते हैं, कोई संस्कार बदलते हैं, कोई कमियां छूटती है। मान लो क्रोध पे मुरली चली तो हर व्यक्ति सोचता तो है ना कि मुझे अपना क्रोध कम कर देना चाहिए, इतना नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, कभी कभी कर लिया करूंगी, अब रोज नहीं करूंगी, सोचता तो है ना। तो रोज हम बदल रहे हैं। तो अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाना है, सुखदायी बनना है, पक्का करके जाना मधुबन से। लोग हमें दुख दें भी, बाबा ने कई बार एक बहुत अच्छी बात कही, कोई तुम्हें कुछ चीज दे और तुम न लो, गई उधर ही। तो कोई हमें दुख दे, अपने विचारों को थोड़ा खोलो, हम स्वीकार ही नहीं करते। कोई हमारा अपमान करे, बुरा बुरा बोल रहा है, थोड़ा सा संभले, हम सुनते ही नहीं इनकी बात। हमें तो भगवान ने सम्मान दिया है, इनके कहने से क्या होता है। ले ही नहीं, अंदर भेजे ही नहीं उसको, हम अंदर भेज देते हैं अपने। इसलिए दुख होता है, इसलिए इंसल्ट होने पर बहुत बुरी फीलिंग होती है, खुशी चली जाती है। करेंगे इसकी प्रैक्टिस कि हम स्वीकार न करें उन चीजों को। बहुत गहरी बातें हैं ये, स्वीकार तो आप ही हो जाता है ना, हमारी आज्ञा थोड़ा ही चाहिए उसको। लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, हमें ख्याल रहेगा कि हमें दुख लेना ही नहीं है, तो नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत भी हुआ, जल्दी खत्म करके खुशनुमा जीवन का सुख लेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को सुख दें, सुख दें। सभी पक्का करके जाना मधुबन से, सुख का लेन देन करना है, कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। आजकल एक चीज बहुत पाप करा रही है लोगों से। कौन सी? नहीं, मोबाइल पाप की बात नहीं, उसकी दूसरी बात है, धन बहुत पाप कराता है। कराता है नहीं, भाइयों को अनुभव होगा। पैसा दे दिया किसी अपने को जरूरत में, लिखा पढ़ी तो करेंगे नहीं, वे अपना है, बेचारा बीमार है, पैसा दे दिया, अब देने के नाम पे फोन ही नहीं उठाते, सिम बदल लिया है, बोलते ही नहीं, अब मुंह छुपा के चले जाते हैं। नहीं तो एक अच्छे मनुष्य की तो सिंपल नेचर है ना, भाई दे देंगे, हाथ जोड़ते हैं लोग, देंगे, थोड़ी अभी तंगी है, जरूर देंगे, रखेंगे नहीं। लेकिन आजकल तो क्या है, ये मन बन गया है, इनके पास तो बहुत है ना, क्या करना है। हाँ, भागे थोड़ा ही जा रहे, दे देंगे, हम तो यही हैं। तो ये सब धन बहुत पाप करा रहे, माताओं को भी और भाइयों को भी इस पाप से बहुत बचना है। बचना है या नहीं? किसी भी गलत तरीके से कमाया गया धन सुख नहीं देगा। कोरोना में बहुतों ने अनुभव कर लिया, गलत ढंग से कमाए गए धन का सुख नहीं मिला। अब लास्ट बात कर लें, आज का स्लोगन क्या था? इतनी दुआएं ले लें, हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। दुआएं बहुत बड़ा खजाना है, समय पर बहुत काम आता है। बहुत समय ऐसे आते हैं मनुष्य के पास जहां धन मदद कर ही नहीं सकता, मदद होगी केवल दुआओं की। दुआएं माना जो हमने अच्छे कर्म किए, दूसरों को सुख दिया, किसी की मदद की है, उसके मन से जो शुभ भावनाएं निकली हैं, दुआएं निकली हैं, वो चाहे मुख से बोले या न बोले, उसके वाइब्रेशन समय मिलते रहते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ कर्म सब करेंगे, दुआओं का खाता बढ़ता चले, असंभव को भी संभव कर देंगे। हाँ, वो तो वरदान था, पर ये बात कितनी बड़ी है, असंभव भी संभव। अगर डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी जाएगी नहीं, तुमको लेकर ही जाएगी अब, तो भी जिसके पास दुआएं हैं, डॉक्टर भी हैरान होंगे कि ठीक कैसे हो गए। ऐसे बहुत केस हैं, क्योंकि मेरे को तो बताते हैं लोग कि हमने यही अभ्यास किया, डॉक्टर ने तो छोड़ दिया था और हम ठीक हो गए। डॉक्टर कहते हैं तुम जिंदे हो क्या, ये भी कहते हैं तुम जिंदे हो, हाँ जिंदे हैं। तो दुआओं का खजाना बढ़ाते चलेंगे, सुख देंगे, दूसरों को मदद करेंगे। नम्रता ब्राह्मण आत्माओं का, योगी आत्माओं का श्रृंगार है। कभी भी अहम भाव में आकर कटु वचन बोलकर दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। ये कुछ बातें यहाँ से पक्की कर देनी है। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।